ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 5 अप्रैल 2026 के लिए है। विषय कल्पना, स्वर्णपथ, यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उत्तरदायी अध्ययन भजन संहिता। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बात को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की दूर मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सहमति दी है, वरुण मेरा मन भी मुझे रात को शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भगत को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फिसा का पर्व होगा, और मनुष्य का पुत्र सलीब पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यूहन्ना। यहूदियों का फिसा का पर्व निकट था, और यीशु यरूशलम को गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सराफों के पैसे बिथरा दिए और प्यादों को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा। परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। मरकस। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों और पुरानियों और शास्त्रियों ने वरुण सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। यूहन्ना। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो सूली पर चढ़ाया जाए। तब वो यीशु को ले गए और वो अपनी सूली आप उठाए हुए बाहर उस स्थान तक गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और अबरानी में गुलगत्ता। वहां उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया। यूहन्ना। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वो प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर ना गए। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वो तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो दूतों को अज्वल कपड़े पहने हुए एक को सराहने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात गुरु। उसी दिन, जो हफ्ता का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। परीरतों के काम। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। तमैथियस। पौलुस, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का परीरत है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमृता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ। यूहन्ना, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। ये जीवन अनंत है, यीशु कहते हैं, है नहीं होगा, और फिर वो अपने पिता और स्वयं के वर्तमान ज्ञान के रूप में अनंत जीवन को परिभाषित करता है, जिसका अर्थात है प्रेम, सत्य और जीवन का ज्ञान। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। धर्म ग्रंथ कहते हैं, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जिंदा रहेगा। ये दिखाता है कि सत्य ही इंसान का असल जीवन है, लेकिन इंसान इस शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाने पर एतराज करते हैं। सवाल, जीवन क्या है? उत्तर, जीवन ईश्वरीय सिद्धांत मन, आत्मा, रूह है। जीवन की कोई शुरुआत नहीं है और कोई अनंत नहीं है। समय नहीं बल्कि अनंत काल जीवन के विचार को व्यक्त करता है, और समय अनंत काल का हिस्सा नहीं है। जीवन दिव्य मन है, जीवन सीमित नहीं है। जीवन के लिए मौत और सीमितता अज्ञात हैं। हम मानते हैं कि यीशु का सूली पर चढ़ाया जाना और उसका फिर से जिंदा होना हमेशा रहने वाले जीवन को समझने के लिए विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है, यहाँ तक कि आत्मा, रूह और चीजों की कमी को भी। मृत्यु में सभी विश्वासों का त्याग और इसके डंक के डर से स्वास्थ्य और नीतिकता के स्तर को अपने वर्तमान उठान से बहुत ऊपर उठाया जा सकता है, और हमें ईश्वर में जीवन के प्रति असीम विश्वास के साथ मसीही धर्म के झंडे को धारण करने में सक्षम करेगा। हमारा गुरु अपने शिष्यों के सामने फिर से प्रकट हुआ और उनकी आशंका के अनुसार वो कब्र से उठे अपने ऊपर उठते विचार के तीसरे दिन, और इस तरह उन्हें हमेशा रहने वाले जीवन का पक्का एहसास कराया। यहूदियों ने जो परमेश्वर के इस जन को मारना चाहते थे, ये स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उनके भावतिक दृष्टिकोण ही उसके दुष्ट कार्यों के जनक थे। जब यीशु ने अपने शरीर को दोबारा बनाने की बात की, ये जानते हुए कि मन ही इसे बनाता है, और कहा कि मंदिर को ढा दो और मैं उसे तीन दिन में फिर खड़ा कर दूंगा, तो उन्होंने सोचा कि उसका मतलब उनके शरीर की बजाय उनके भावतिक मंदिर से था। ऐसे पूंजीवादी लोगों को असली इंसान एक भूत जैसा लगता था, अनदेखा और अनजान, और शरीर जिसे वो कब्र में रखते थे पदार्थ जैसा लगता था। इस भावतिक वाद ने सच्चे यीशु को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वफादार मरियम ने उसे देखा और उसने पहले से कहीं ज़्यादा उसके सामने जीवन और तत्व का सच्चा विचार प्रस्तुत किया। इंसान के भावतिक और पापी विश्वास के कारण आध्यात्मिक यीशु उनके लिए अदृश्य था। दिव्य विज्ञान का उसका प्रदर्शन जीवन की समस्या को जितना ऊंचा उठाता था, और वो इसके दिव्य सिद्धांत सत्य और प्रेम की मांगों को जितना साफ तौर पर बताता था, वो पापियों और उन लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा नफरत भरा होता गया जो पाप और बीमारी से बचने के लिए सिद्धांतों और भावतिक नियमों पर निर्भर थे और जीवन के ज़रूरी नियम के अनुसार मौत को भी मान लेते थे। यीशु ने अपने फिर से जी उठने से उन्हें गलत साबित कर दिया और कहा, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। यीशु की आध्यात्मिक उत्पत्ति और समझ ने उसे होने के तत्वों को प्रदर्शित करने में सक्षम किया। ये साबित करता है कि आध्यात्मिक सत्य भावतिक त्रुटि को कैसे नष्ट करता है, बीमारी को ठीक करता है और मृत्यु को मात देता है। गुरु ने स्पष्ट रूप से कहा कि शरीर आत्मा नहीं है, और अपने पुनरुत्थान के बाद उन्होंने भावतिक इंद्रियों से ये सिद्ध कर दिया कि उनका शरीर तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो स्वयं स्वर्गारोहण नहीं कर लेते, या दूसरे शब्दों में आत्मा ईश्वर की समझ में और भी ऊंचे नहीं उठ जाते। यीशु की मृत्यु के बाद लगने वाली शारीरिक स्थिति सभी भावतिक स्थितियों से ऊपर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और इस अतिशयोक्ति ने उसके उद्गम की व्याख्या की और कब्र से परे एक परिवेक्षाधीन और प्रगतिशील राज्य का खुलासा किया। यीशु रास्ता था, इसका मतलब है उसने सभी पुरुषों के लिए रास्ता चिन्हित किया। अपने अंतम प्रदर्शन में स्वर्गारोहण कहा जाता है, जिसने यीशु के संसारिक रिकॉर्ड को बंद कर दिया। वो अपने शिष्यों के भावतिक ज्ञान से ऊपर उठ गया और भावतिक इंद्रियों ने उसे नहीं देखा। इसके बाद उनके छात्रों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा और सहा उससे वो ईश्वरीय विज्ञान की बेहतर समझ के लिए जागे। यहाँ तक कि यीशु की शिक्षाओं और प्रदर्शनों की आध्यात्मिक व्याख्या और समझ के लिए भी, जिससे उन्हें ईश्वर के जीवन का एक हल्का सा अंदाजा हुआ। अनुभवी सभी शिष्यों के माध्यम से अधिक आध्यात्मिक हो गई और इससे बेहतर समझी जो मालिक ने सिखाया था। उसका जी उठना उनका भी जी उठना था। इससे उसे खुद को और दूसरों को आध्यात्मिक निराशा से दूर रखने और ईश्वर में असीम संभावनाओं की धारणा में अंधे ना होने में मदद मिली। उन्हें इसकी जल्द आवश्यकता थी। जल्द ही उनका मालिक वास्तविकता के आध्यात्मिक क्षेत्र में फिर से उठेगा और उनकी आशंका से भी बहुत ऊपर जाएगा। अपने विश्वासियों के लिए पुरस्कार के रूप में वो उस परिवर्तन में भावतिक अर्थों के लिए गायब हो जाएगा जिसे तब उद्गम कहा जाता था। हमारे काल में मसीहत फिर से ईश्वरी सिद्धांत की शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, जैसा कि 1900 साल पहले हुआ था बीमारों के इलाज और मृत्यु पर विजय पाने से। सत्य के पवित्र अभियारने में गंभीर महात्व की आवाजें हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारे जीवन में तथाकथित सुख और दुख दूर हो जाते हैं, तभी हम त्रुटि के दफनाने और आध्यात्मिक जीवन के पुनरुत्थान के निर्विवाद संकेत पाते हैं। सत्य हमारे लिए पुनरुत्थान और जीवन तभी होगा जब ये सभी गलतियां और इस विश्वास को खत्म कर देगा कि मन, जो इंसान की एकमात्र अमरता है, शरीर से बंधा हुआ हो सकता है और जीवन मौत के काबू में हो सकता है। नश्वर मन के लिए सामग्री पर्याप्त है और बुराई वास्तविक है। ये भावतिक मानसिकता, गलत दिमाग नश्वर है, इसलिए मनुष्य का सर्वनाश होगा। क्या ये आध्यात्मिक वास्तविक मनुष्य के अपने ईश्वर के साथ अवेकी संबंध के लिए नहीं था जिसे यीशु प्रकाश में लाया था? अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण में यीशु ने दिखाया कि नश्वर मनुष्य मनुष्यत्व वास्तविक सार नहीं है और ये अवास्तविक भाविक नश्वरता वास्तविकता की उपस्थिति में लुपट हो जाता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओं से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।